आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में विकास में तेजी लाने, निजी क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए समावेशी विकास और मध्यम वर्ग की खर्च करने की क्षमता पर जोर दिया। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और विकासशील कृषि जिला कार्यक्रम की घोषणा की। संशोधित ब्याज छूट योजना के तहत केसीसी ऋण सीमा 5 लाख रुपए की जाएगी। सत्ता पक्ष ने आम बजट की सराहना की, जबकि विपक्ष ने कहा झारखंड के हितों की अनदेखी की गई। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में बोकारो और डाल्टनगंज में सीआरपीएफ और पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हथियार के अलावा 5 आईईडी बम बरामद। और हॉकी इंडिया लीग के फाइनल में हैदराबाद तूफान्स और श्राची राड़ बंगाल टाइगर्स के बीच खिताबी मुकाबला राउरकेला में जारी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 प्रस्तुत किया। यह एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट में विकास के 4 इंजनों कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात की पहचान की है और कहा कि इसका लक्ष्य विकास में तेजी लाना, समावेशी विकास सुनिश्चित करना, निजी क्षेत्र में निवेश में वृद्धि और देश के मध्यम वर्ग की खर्च करने की क्षमता बढ़ाना है।
Our four powerful engines are agriculture, MSME, investments and exports. The fuel, our reforms, our guiding spirit, inclusivity and the destination, Vikasit Bharat. This budget aims to initiate transformative reforms.
वित्त मंत्री ने कहा कि नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख तक की आय पर कोई कर देय नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि यह बजट मध्यम वर्ग भारत के विकास के लिए शक्ति प्रदान करता है।
अब इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले जिनकी आय बंधी हुई है, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला।
वित्त मंत्री ने टीडीएस टीसीएस दरों को युक्तिसंगत बनाने और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कर कटौती की सीमा 50,000 रूपये से बढ़ाकर 1 लाख रूपये करने का प्रस्ताव किया। किराए पर टीडीएस की वार्षिक सीमा 2,40,000 रूपये से बढ़ाकर 6 लाख रूपये की जाएगी। साथ ही अद्यतन विवरणी दाखिल करने की समय सीमा 2 साल से बढ़ाकर 4 साल करने का प्रस्ताव रखा गया। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और विकासशील कृषि जिला कार्यक्रम की घोषणा की। इसके अंतर्गत 100 जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें कृषि उत्पादकता और फसल की विविधता को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तिलहन मिशन कार्यान्वित कर रही है। साथ ही अरहर, उड़द और मसूर के उत्पादन पर विशेष ध्यान देने के साथ 6 वर्षीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन शुरू करेगी। बजट में सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम के लिए उपायों की भी अवधारणा तैयार की गई है। श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संशोधित ब्याज योजना के अंतर्गत किसान क्रेडिटों के माध्यम से मिलने वाले ऋण की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बजट में जो घोषणाएं हुई हैं, वह कृषि क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई क्रांति का आधार बनेगी।
बजट में किसानों के लिए जो घोषणा हुई है, वो कृषि क्षेत्र और समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई क्रांति का आधार बनेगी। पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों में सिंचाई और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा।
वित्त मंत्री ने विकास के लिए एमएसएमई को दूसरा शक्तिशाली इंजन बताया और बजट में लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों के वर्गीकरण के लिए निवेश की सीमा 2.5 गुना बढ़ाने और कारोबार सीमा भी 2 गुनी करने का प्रस्ताव रखा। श्रीमती सीतारमण ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की पहली बार की उद्यमी 5 लाख महिलाओं के लिए एक नई योजना का शुभारंभ किया। यह अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ रूपये तक के ऋण प्रदान करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निवेश को वृद्धि का तीसरा इंजन बताते हुए लोगों, अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश को प्राथमिकता दी। बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने की घोषणा की गई, जिससे भारत में संपूर्ण प्रीमियम का निवेश अनिवार्य होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय डाक भुगतान बैंक की पहुंच बढ़ाने और भारत नेट परियोजना के तहत सरकारी स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देने की योजना बनाई गई है। श्रीमती सीतारमण ने निर्यात को विकास का चौथा इंजन बताते हुए कहा कि क्षेत्रीय और मंत्रालयीय लक्ष्यों के साथ एक निर्यात संवर्धन मिशन का शुभारंभ किया जाएगा, जिसे वाणिज्य मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आम बजट की सराहना की है। रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में केंद्रीय बजट पर परिचर्चा का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई नेता शामिल हुए। श्री मरांडी ने बजट की सराहना करते हुए इसे भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने वाला बताया।
इतनी अच्छी बजट वर्षों बाद एक साथ दिखाई पड़ा। उन्होंने हर क्षेत्रों को ध्यान में रखा, महिलाओं को भी विशेष फोकस किया है, तो युवाओं के ऊपर भी ध्यान दिया है, छात्रों पर भी ध्यान दिया है कि हमारे मेडिकल क्षेत्र में भी छात्र अधिक से अधिक पढ़े, फिर IIT के क्षेत्र में भी एक और उद्योग के हब भी बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग हब भारत को बनाने का भी उन्होंने साफ साफ बताया।
पार्टी प्रवक्ता प्रतुल नाथ शाहदेव ने कहा कि बजट सर्वस्पर्शी है, जिसमें महिलाओं, युवाओं, किसानों और छात्रों का विशेष ध्यान रखा गया है।
क्या समाज के सभी तबकों को यह बजट टच करता है, और आप देखिए उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि जितनी विश्व की बड़ी आर्थिक व्यवस्थाएं हैं उसमें भारत की इकोनॉमी जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और उन्होंने ये भी बताया कि अगला जो 5 वर्ष है वो समर्पित रहेगा सबका विकास की ओर, मध्यम वर्ग के लिए। तो उन्होंने खुशी के द्वार खोल दिए साहब, 12 लाख रुपए तक में कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा।
वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि आम बजट में झारखंड के हितों की अनदेखी की गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता मनोज पांडे ने कहा कि यह बजट बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए पेश किया गया है।
बराबर का हक मिलना चाहिए किसी एक राज्य को विशेष, क्यों? बजट पूरी तरह से चुनावी बजट, क्योंकि बिहार में सामने चुनाव है, भाजपा की नैया डूबती नजर आ रही है, तो वो बजट के माध्यम से कुछ बरगलाना चाहते हैं, वहाँ किसी तरह बजट को दिखलाकर वोट कुछ मिल जाए, इस कवायद में लगी हुई है सरकार।
कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने आम बजट को जन विरोधी बताते हुए कहा कि यह केवल डबल इंजन सरकारों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया है। बोकारो में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि बजट में मात्र 0.2% लोगों का ही ख्याल रखा गया है, जबकि आम जनता उपेक्षित रह गई।
देखिए, ये दिल्ली और बिहार के चुनाव के मद्देनजर बजट पेश किया गया है, हमारे राज्य को कुछ भी नहीं मिला। झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है, झारखंड की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जहां उनकी दोनों सरकार रहेगी उसको तो वो कुछ देंगे, जहां विपक्ष की सरकार रहेगी तो उसको नहीं देंगे।
आकाशवाणी रांची के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा केंद्रीय बजट 2025-26 पर आज शाम 8 बजे से 8:30 बजे तक जीवंत परिचर्चा प्रसारित की जाएगी। इसमें IIM रांची के प्रोफेसर प्रसेनजीत चक्रवर्ती, चार्टर्ड अकाउंटेंट बिपिन कुमार और झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के संयुक्त सचिव नवजोत अलंग हिस्सा बनेंगे। इसे आकाशवाणी रांची के प्राइमरी चैनल पर सुना जा सकेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल AIRNews_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय बजट पेश होने के बाद राज्य के प्रबुद्ध नागरिकों, बुद्धिजीवियों और समाज सेवियों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। गोड्डा चैंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव प्रकाश अग्रवाल ने केंद्र सरकार के बजट का स्वागत किया है।
आज का बजट हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा दिया गया, उसमें जो आम लोगों के लिए टैक्स स्लैब 12 लाख तक की गई है, कि जो 12 लाख तक कमाते हैं उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो एक स्वागत योग्य है और इससे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलेगा और ये एक ऐतिहासिक फैसला है चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से, ये स्वागत योग्य है।
इधर देवघर जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव कृष्ण धन खवाड़े ने कहा कि बजट में विशेषकर झारखंड के लिए कोई राहत नहीं दी गई।
आज प्रस्तुत बजट के विषय में मुझे कहना है कि बजट मिला जुला के ठीक ठाक है, लेकिन स्पेशली झारखंड के लिए कोई राहत या कोई पैकेज नहीं है और हम अधिवक्ताओं के लिए केंद्र सरकार ने कोई कोर्स की व्यवस्था नहीं की है, जो हम लोगों को थोड़ा निराशा फील कराता है।
केंद्रीय बजट पर आम जनों और छात्रों ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय में पीएचडी कर रहे छात्र मुकेश राम प्रजापति ने बजट का स्वागत किया है।
इस बार जो बजट आया है वो बिल्कुल लोक कल्याणकारी है, मध्यवर्गियों को बहुत लाभ होना है। पहले वो 5 लाख में टैक्स देते थे, फिर 7 लाख में देने लगे, लेकिन इस बार जो आया 12 लाख तक उनको टैक्स नहीं पे करना, ये बहुत खुशी की बात है, आम लोग बहुत खुश है।
इधर खूंटी जिले के झाविमो पूर्व जिलाध्यक्ष दिलीप मिश्रा ने बताया कि बजट में गृहिणियों के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किए गए हैं।
जो नौकरी पेशा करने वाले हैं उनके लिए तो तलवार की धार पर लटकी हुई, और साथ साथ गृहिणी महिलाओं के लिए जो गैस सिलेंडर का पूर्व में घोषणा किया गया था सरकार के द्वारा कि हम सिलेंडर का दाम कम करेंगे, पेट्रोल और डीजल का जीएसटी में कमी करेंगे, लेकिन उस और भी जो बजट को देखने को मिला उसमें ये कहीं नहीं है।
राज्य सरकार के मुख्य सचिव अलका तिवारी ने गढ़वा जिले के अन्नराज डैम का निरीक्षण किया। मौके पर उन्होंने डैम के पर्यटन और इको टूरिज्म के विकास पर चर्चा की और स्थानीय अधिकारियों से सुझाव लिए। मुख्य सचिव ने कहा कि अन्नराज डैम में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं और इसे विकसित किया जाएगा। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में बोकारो और डालटनगंज जिले में बड़ी सफलता मिली है। बोकारो पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त रूप से ऊपरघाट क्षेत्र से AK-47 राइफल, गोलियां, 4 IED बम और 500 रूपये नकद बरामद की। इधर पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के दूधिया गांव में पुलिस ने 9 किलो का IED बम और एक देसी कट्टा बरामद किया। पुलिस अधीक्षक रीश्मा रमेशन ने बताया कि जमीन में गाड़कर रखे IED बम को मौके पर नष्ट कर दिया गया। खूंटी जिले में नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत संचालित संपूर्णता अभियान पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और जानकारी दे रही हैं हमारी खूंटी संवाददाता।
खूंटी जिले में नीति आयोग द्वारा निर्धारित 6 प्रमुख क्षेत्रों सॉयल हेल्थ कार्ड, गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व देखभाल, अनुपूरक पोषण, टीकाकरण, बुनियादी सुविधायुक्त विद्यालय एवं पाठ्य पुस्तक उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया गया। वहीं नीति आयोग द्वारा खूंटी जिले के आकांक्षी कर्रा प्रखंड को शानदार प्रदर्शन करने के लिए ही समूचे 6ठे पूर्वी क्षेत्र में प्रथम स्थान हासिल करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा 1.5 करोड़ रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप दिया गया है। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी।
और अब हॉकी। हॉकी इंडिया लीग के फाइनल में हैदराबाद तूफान्स और श्राची राड बंगाल टाइगर्स के बीच खिताबी मुकाबला राउरकेला में जारी है। कल राउरकेला में हैदराबाद ने JSW सूरमा हॉकी क्लब को हराकर फाइनल में जगह बनाई। श्राची राड बंगाल टाइगर्स की टीम तमिलनाडु ड्रैगन्स को हराकर फाइनल में पहुंची है। इधर खूंटी जिले के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में CLNL और बोवेलैंडर फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से नीदरलैंड के HC ब्लूमेंडल क्लब और झारखंड 11 महिला टीम के बीच मैत्रीपूर्ण हॉकी मैच का आयोजन किया। नीदरलैंड की टीम ने 6-0 से जीत हासिल की। विधायक रामसूर्य मुंडा और बोवेलैंडर फाउंडेशन के CEO फ्लोरिस बोवेलैंडर ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में विकास में तेजी लाने, निजी क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए समावेशी विकास और मध्यम वर्ग की खर्च करने की क्षमता पर जोर दिया। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और विकासशील कृषि जिला कार्यक्रम की घोषणा की। संशोधित ब्याज छूट योजना के तहत KCC ऋण सीमा 5 लाख रूपये की जाएगी। सत्ता पक्ष ने आम बजट की सराहना की, जबकि विपक्ष ने कहा झारखंड के हितों की अनदेखी की गई। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में बोकारो और डाल्टनगंज में सीआरपीएफ और पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हथियार के अलावा 5 आईईडी बम बरामद। और हॉकी इंडिया लीग के फाइनल में हैदराबाद तूफान्स और श्राची राड बंगाल टाइगर्स के बीच खिताबी मुकाबला राउरकेला में जारी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।